जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरावन चारी यमुन तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद प्रेल प्रभु पद
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की रथ यात्रा महामहोत्सव की श्री श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की श्री श्री शिवानंद सेन की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। अब एसी लगा है तो थोड़ा सीमेंट करके बैठ जाइए। कथा के बीच में बहुत लोग इधर उधर आते हैं, इधर उधर देखते हैं तो ध्यान भटक जाता है। श्लोक निकाल दिए ना? ठीक ठीक। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध देन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आज तीन चार टॉपिक दे दिए हैं तो समय तो बढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। दो चार मिनट हो सकता है कि आगे भी चला जाए, हम कोशिश करेंगे समय पर समाप्त करने का, लेकिन पहले से तैयार रहिए कि दो चार मिनट आगे जा सकता है, पांच मिनट। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे, वर्तमान में श्लोक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय का 136 नंबर का है। मूलतः श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, लेकिन रथ यात्रा के क्रम में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं, हम लोग भी इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उधर देखो उधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहु च ते नलिननाभ पदारविन्दम् योगेश्वरहि हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधहि संसारकूपपतित उत्तरण अवलम्बम् गेहम् जुषाम् अपि मनसि उदयात् सदा नः। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरहृदि विचिन्त्यमगाधबोधै। संसारकूपपतिततरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस् उदयात् सदा नः। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् जोगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधये संसार कोप पतित तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस् उदयात् सदा नः माता जी बालक पतित तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस् अब सब लोग साथ में रुष्यते नलिन नाभ पदारविन्दम् जोगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधये संसार कोप पतित तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस् उदयात् सदा। फिर से एक बार, थोड़ा बहुत जल्दी नहीं। नाभ पदारविन्दम् जोगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधये संसार कोप पतित तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस् उदयात्। आहु गोपियों ने कहा च और ते आपका नलिन नाभ, हे भगवान, जिसकी नाभि कमल के पुष्प जैसी है, जिसकी नाभि कमल कमल के पुष्प जैसी है, पद अरविंदम चरण कमल जोग जोग ईश्वर ही महान योगियों के हृदय हृदय में विचिन्त्यम ध्यान करने योग्य है। अगाध बोध है, जो अति विद्वान दार्शनिक हैं, संसार कूप भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं में पतित उन पतितों के उत्तरण उद्धार के लिए अवलंबम एकमात्र आश्रय गेहम पारिवारिक कार्यों में जिसाम व्यस्त अपि यद्यपि मनसि मनो में उदयात जागृत हो सदा सदा न हमारे। अनुवाद, गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाथ, जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहती हैं कि वे ही चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गोपियां गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। तात्पर्य, यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 10:82-48 का है। गोपियों को कभी भी कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में रुचि नहीं थी, वे तो एकमात्र भक्ति योग में रुचि रखती थी। जब तक उन्हें बाध्य नहीं किया गया उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना नहीं चाहा। प्रत्युत वे उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थलों पर रखना चाहती थी। कभी कभी उन्हें खेद होता था कि उनके वक्षस्थल इतने कठोर हैं, जिससे उन्हें भय था कि कृष्ण अपने कोमल चरण उन पर न रखना चाहे। जब वृंदावन के चरागाहों के बालू के कण उनके चरण कमलों में गड़ जाते तो गोपियों को वेदना होती और वे रोने लगती। गोपियां कृष्ण को हमेशा अपने पास घर पर रखना चाहती थी। इस प्रकार उनके मन कृष्ण भावनामृत में मग्न रहते थे। ऐसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत केवल वृंदावन में प्रकट हो सकती है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से संतृप्त अपने मन को अपने मन की बात बताने लगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज बहुत पवित्र तिथि है। आज रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। उड़ीसा के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु के अतिशय निकट दो परिकरों का तिरोभाव तिथि है। और ये सब रथ यात्रा से संबंधित है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए वृंदावन आना चाहते थे। मां सची अपने इच्छा प्रकट की कि वृंदावन के बजाय निमाई जगन्नाथपुरी में रहे तो अच्छा है। उसका कारण था कि नवदीप से वृंदावन का आना जाना बहुत कम था, लेकिन उस समय भी नवदीप से रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी बहुत लोग जाते थे। मां सची के मन में यह भावना थी कि कम से कम हमारे बेटा का समाचार तो मिलता रहेगा। नवदीप से लोग जाएंगे तो कुशल वार्ता बतलाएंगे, इससे कम से कम संतोष रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किए। चैतन्य महाप्रभु के अनेक परिकर हैं। कुछ परिकरों को वे वृंदावन भेजे, कुछ परिकर जगन्नाथपुरी में और कुछ परिकर नवदीप के हैं। लेकिन नवदीप के परिकरों में से कुछ परिकर जगन्नाथपुरी में ही जाकर के अपना डेरा जमा दिए, वहीं चैतन्य महाप्रभु के सान्निध्य के लिए रहने लगे। और कुछ परिकर हैं कि नवदीप में रहते थे और समय समय पर जगन्नाथपुरी जाते थे। आज हम लोग दो परिकर का अति संक्षेप में स्मरण करेंगे। इच्छा तो हो रही है कि उन्हीं के विषय में बोला जाए। और एक परिकर है शिवानंद सेन, मूलतः ये बंगाल के हैं, एक चैतन्य महाप्रभु के अतिशय निकट के व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आत्मीयता से उनको स्वीकार किए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु से और शिवानंद का कितना घनिष्ठ संबंध है, अब इस बात को एक प्यार से आप समझ सकते, अनुमान कर सकते हैं। शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाई व्यापार, शिवानंद सेन कितना सौभाग्यशाली है, अब इसका अनुमान कौन कर सकता है। जार सब गोष्ठी के प्रभु करे अपना, जिसके पूरे परिवार को चैतन्य महाप्रभु अपना मानते, और शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय व्यक्ति हैं, अतिशय घनिष्ठ व्यक्ति हैं। और अब जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चले गए, और शिवानंद सेन प्राय प्रत्येक साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जाते थे और वहां कई एक महीने तक रुकते थे चैतन्य महाप्रभु के संग के लिए। और वे यात्रा में जाते थे तो उनके साथ उनका परिवार भी होता था, और केवल परिवार ही नहीं, नवद्वीप के सैकड़ों लोग, हजारों लोग, कभी कभी लाखों लोग जाते थे। और शिवानंद सेन की विशेषता थी कि सबका देखरेख करते थे। यात्रा करने में खर्च लगता है, वे लोग पैदल जाते थे, लेकिन उस समय भी नदी को पार करना होता था, और नदी को पार करने के लिए तो कुछ पैसा देना पड़ता है नाविक को। तो वे सबका समाधान करते थे। भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, कितने भक्त गरीब हैं, लेकिन शिवानंद सेन जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके भी मार्ग व्यय की व्यवस्था करते थे। तो अब उनके विषय में कह रहे हैं कि शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुखे लैया जान। जब जगन्नाथपुरी की यात्रा करते थे तो सबको साथ में लेकर के चलते थे, सबकी व्यवस्था देखते थे, जो आवश्यकता उसको पूरा करते थे, और आनंद से जगन्नाथपुरी जाते थे। और जगन्नाथपुरी जाने पर वो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के भक्तों के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन अब जो रोज रोज की व्यवस्था है, कोई एक चीज की आवश्यकता है, उसके विषय में तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, तो शिवानंद सेन को ही वो इंचार्ज बनाए थे, किसके क्या आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। तो आनंदे सवार निया देन वास स्थान शिवानंद सेन करे सवार पालन। और अब शिवानंद सेन तो मनुष्य को लेकर के जाते ही थे, यह भी था कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी कुछ पशु भी हैं, जैसे कुत्ता है, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहता था, और उनके पीछे कुत्ता लग गया, और शिवानंद सेन और इतना चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी हैं कि बहुत आग्रह करके वो कुत्ते को भी नदी को पार करा देते थे। जहां तक बंगाल की सीमा थी तो वहां तक तो उनको कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन उड़ीसा में एक नदी को पार करना था, अब वहां का नाविक इनकार कर दिया, मना कर दिया कि ना पशु को हम नहीं पार करेंगे, कुत्ता को हम पार करेंगे, ये आदमी के लिए है, आदमी को तो पार कर दिए। अब जेट विमान तो नहीं, लेकिन जेट बोट के लिए भी तैयार होगा, चार्टेड बोट, चार्टेड विमान कहते हैं ना। अब कहे कि भाई तुम अधिक पैसा ले लो, एक बार में केवल कुत्ते को ही पार कर दो, लेकिन वो नहीं तैयार हुए, बड़ा वे दुखी हुए। अब क्या कर सके, और हम बड़ा दुखी मन से वहां गए, चिंता थी क्या हुआ कुत्ता को। जब चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने गए तो देखे कि वहां कुत्ता उपस्थित, और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसको नारियल सस्य गिरी उसका दे रहे हैं और कुत्ता खा रहा है। कुत्ता भगवान का नाम बोला और थोड़े देर के बाद अंतरहित हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ भी, शिवानंद सेन के साथ, अब नित्यानंद प्रभु का क्या व्यवहार है, यह तो सुन करके बहुत आश्चर्य होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 12वें परिच्छेद में। इच्छा तो हो रही है एक एक प्यार पढ़ करके कहें, लेकिन समय बहुत अधिक लग जाएगा, हम संक्षेप में कहना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी मना कर देते थे नवदीप के भक्तों को कि इस बार नहीं आना है। मना करने के कई एक कारण थे, कभी कभी उनको कुछ यात्रा करना है तो उनको लगता था कि वे लोग दूसरी आग्रह करने लगेंगे, इसलिए मना कर देते थे। कभी कभी प्रचार का कार्य है तो इसलिए मना कर देते थे कि उधर ही प्रचार कीजिए। तो एक साल वे मना कर दिए थे नित्यानंद प्रभु को कि रथ यात्रा के समय नहीं आना है, नवदीप में प्रचार करना है। लेकिन प्रेम का ऐसा स्वभाव है, मना करने से क्या हुआ, सब लोग फिर उत्साह से चले। अब उत्साह से चले तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में है, और शिवानंद सेन तो जा रहे हैं, सबकी व्यवस्था करते थे। तो भाई जो मैनेजर हैं तो उनको तो अब आगे पीछे सब देखना होता है, तो एक जगह नदी पार करना था, संख्या बहुत अधिक थी, और शिवानंद सेन रुक गए, सबको पार कर रहे थे, एक बार नहीं पार कर सकते, तो आगे पार कर दिए नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु तो पहले चले गए, और इधर पार करने के बाद आगे जा करके उनको कहाँ रुकना है, भोजन की क्या व्यवस्था, ये सब भी इनको ही करना था, ये इंचार्ज थे। अब इधर तो पार करने में ही देर हो गए, ये बहुत पीछे रह गए, कई एक ट्रिप में नौका से पार करना हुआ, और नित्यानंद प्रभु पहले वहां जा करके तैयार, जहां रुकना था वहां पहुंच गए, और लोग पहुंच गए। अब नित्यानंद प्रभु वहां चले गए और देखे कि शिवानंद से नहीं आया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, भूख भी लग गई थी, अब भोजन की भी व्यवस्था नहीं, कहाँ रुकना इसकी भी व्यवस्था नहीं, और उनको बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, वो हम लोगों को लेकर के आया और न भोजन की व्यवस्था कर रहा है, न रहने की व्यवस्था कर रहा है, अब भूख के मारे पेट जल रहा है, उसके तीनों लड़के मर जाएं। अब ऐसे साप दिए, तीन लड़के हैं, और शिवानंद सेन तो पीछे थे, लेकिन उनकी पत्नी और भी परिवार के लोग वहीं थे। अब तो उनकी पत्नी सुनी, ऐसे भगवान साप दे रहे हैं, और पुत्र का स्नेह बड़ा दुख में पड़ी, वो तो एकदम चिल्लाने लगी, रोने लगी। कुछ देर के बाद शिवानंद सेन आए और वो बतलाए कि ऐसे ऐसे बच्चों को साप दे दिए, बच्चे तो मर जाए। शिवानंद सेन कहे पागल स्त्री भावुक, और भगवान को भूख लगी है, गलती किए हैं तो साप नहीं देंगे, वो क्या गलती कर दिए। और शिवानंद से ने गए नित्यानंद प्रभु के पास। अब नित्यानंद प्रभु तो इतने गुस्से में थे कि सीधे लात मार दिए। शिवानंद से क्षमा मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई, विलंब हो गई, अब इसके बाद सबको रहने खाने की व्यवस्था की है। और फिर चैतन्य महाप्रभु के नहीं नित्यानंद प्रभु के पास गए और कहे कि आज मैं समझ गया कि हमको आप कितना अपना मानते हैं, जिसके चरण धूलि के लिए कितना कितना तपस्या लोग करते हैं वह प्राप्त नहीं होता है, और आप अपने से अर्पित किए हमको प्रदान किए हम आपके कृपा मानते हैं। अब शिवानंद सेन को तो कुछ दुख नहीं है, लेकिन शिवानंद सेन के पत्नी का बेटा था, उनका भगिना था, वो देखा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु साप दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसको बड़ा दुख लगा। तो वो थोड़ा आगे गया कि चैतन्य महाप्रभु से कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के पास गया तो जाकर के प्रणाम किया। अब वो प्रणाम कर रहा है तब तक गोविंद चैतन्य महाप्रभु का सेवक पहले कुर्ता खोलो कुर्ता खोलो ऐसे ही नमस्कार करने लगा। स्मृति शास्त्रों का नियम है कि ये वस्त्र कुर्ता के साथ भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहिए। दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, बरसाना में भी कई एक संत इसका अनुपालन करते हैं। अब तो उधर से भी टांट, वो तो बड़ा दुखी होकर के गया था और चैतन्य महाप्रभु से कंप्लेन करने गया था, लेकिन अब गोविंद डांटने लगे तो पहले कुर्ता खोल कर कैसे कैसे नमस्कार कर दिया। साधु बहुत डांटते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहे अरे अब ये श्रीकांत बहुत दुखी है, देखो उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, वो जैसे रहना चाहता है जो करना है छूट दो, वो उसका मन बहुत दुखी है नित्यानंद प्रभु के वाक्य से। जब ऐसे श्रीकांत सुने तब अब समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अब इनसे कुछ कहने की क्या जरूरत है, तो कुछ कहे नहीं। और शिवानंद सेन जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहे कि लड़के का क्या नाम रखा है, दो पुत्र हो चुके थे, तीसरा गर्भ में था, तभी वे चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे तो कहे थे कि जो पुत्र होगा उसका पूरी नाम रखना, पूरी गोस्वामी, और परमानंद नाम रखे थे। चैतन्य महाप्रभु के पास गए पूछे क्या नाम रखे, वो बतलाए कि परमानंद, परमानंद पूरी ऐसे पूरा नाम है, पूरी कह रहे थे रखा। और चैतन्य महाप्रभु उस लड़के को सीधे अपना अंगूठा उसके मुंह में डाल दिए, पैर का अंगूठा, और वो उसका पान किया। तो इन सब घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि शिवानंद सेन कितने अतरंग हैं चैतन्य महाप्रभु। बहुत बहुत बातें हैं लेकिन अब तो हम तो जो मूल विषय है उसको कह ही नहीं पाएंगे। और इसी तरह स्वरूप दामोदर, ये भी नवदीप के परिकर हैं। ये बनारस में आए थे संन्यास लेने के लिए, संन्यास का प्रोसेस चल रहा था, कुछ कृत्य हो गया था लेकिन अभी पूरा कृत्य नहीं हुआ था। उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, वे संन्यास का प्रोसेस आधा में ही छोड़ करके वे जगन्नाथपुरी चले गए। इसी से उनका टाइटल है स्वरूप, नाम दामोदर है। अभी संन्यास पूरा हो जाता तो सरस्वती, भारती, अरण्य, गिरी, पर्वत, जो टाइटल मिलता है 10 टाइटल मिलता है, लेकिन अभी संन्यास का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था और प्रारंभ हो गया था, उसको स्वरूप कहा जाता है। तो संन्यास को पूरा प्रोसेस नहीं किए, सुने कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, आधा छोड़ करके चले गए, वो उनके साथ रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को स्वरूप दामोदर पूरा पूरा समझते थे। और चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भी कुछ सुनाने के लिए आता था तो पहले स्वरूप दामोदर उसको चेक करते थे, वे जब पास करते थे तभी चैतन्य महाप्रभु को कोई सुना सकता था। गीता श्लोक ग्रंथ कवित्व जय करी आने प्रथम सुनाए से स्वरूप स्थाने, स्वरूप ठाई उतरे यदि लया तार मौन तबे महाप्रभु ठाई कराय श्रवण। ओ बहुत है अतरंग है और खास करके गंभीरा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के विरह भाव का आस्वादन करते थे और उनके भाव के अनुरूप पद गाते थे स्वरूप दामोदर, राय रमानंद कथा बोलते थे स्वरूप दामोदर पद गाते थे, और कभी कभी बहुत विरह अवस्था बढ़ जाती थी, ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु का प्राण ही निकल जाएगा, तो स्वरूप दामोदर कुछ गीत गोविंद का या मिलन का पद गाते थे तो उसे चैतन्य महाप्रभु को कुछ सांत्वना होती थी। तो बड़े ही अतरंग व्यक्ति हैं, और आज रथ यात्रा का दिन है और चैतन्य महाप्रभु भी बड़े उत्साह के साथ रथ यात्रा के उत्सव में भाग लेते थे अपने परिकरों के साथ। तो रथ यात्रा के क्रम में कई एक घटना है, आप लोग स्नान पूर्णिमा को कथा सुने होंगे, भगवान बीमार हो गए, और भगवान बीमार हो गए तो अब तो सबसे अधिक जिम्मेवारी पत्नी की बढ़ जाती है। वृंदावन में एक दंपति रहते हैं, तो एक बार पति का तबीयत खराब था तो उनकी पत्नी कह रही थी कि बहुत परेशानी, उनको तुमको क्या परेशानी है, पति का तबीयत खराब है, वो कह रहे कि अरे एक मिनट सोने नहीं देते हैं, कहते हैं कि यहीं खड़ी रहो यहीं बैठी रहो। और ऐसे भी पत्नी की चिंता होती है, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तो क्या क्या कृत करने लगती है। एक कवि बोल रहा था पति पत्नी के व्यवहार पर कि जीने भी नहीं देती है मरने भी नहीं देती है, थोड़ी थोड़ी गलती पर हवाई हमला बिलना से करती है, अरे बहुत खराब है तो छोड़ देती मर जाते है, लेकिन थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हुआ तो तुलसी जी के नीचे दिया रखने लगती है, मरने भी नहीं देती है। जो हो अब तो जगन्नाथ जी का तबीयत खराब, लक्ष्मी जी उनको अब कहीं नहीं जाने देती है, अब 15 दिन तक बिल्कुल लक्ष्मी जी के कंट्रोल में वो सेवा करती है और ठीक कर देती है। लेकिन एक लक्ष्मी जी तो भगवान के प्रेमी नहीं है, भगवान के तो अनेक भक्त हैं। अब 2 सप्ताह के बाद छुट्टी लेते हैं लक्ष्मी जी से, लेकिन अब छुट्टी लेने का ढंग कुछ दूसरा है, भगवान को अपने भक्तों से मिलना है लेकिन किस भक्त से मिलना है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करते। और परमिशन ले रहे हैं, सही बात बतला दें तो शायद परमिशन ही ना मिले, लोग थोड़ा छिपा करके बात बोलते हैं। हमें अभी स्मरण हो रहा है, अभी मैं मॉरिशस था तो जाते जाते एक भक्त आया और कहा कि महाराज कब आप फ्री रहेंगे, एक भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं टाइम दे दिया, हमको नहीं पता था कौन भक्त, तो अभी जिस लड़की से कुछ विवाह की बात चल रही है उसको लेकर के आ गए। तो बाद में हमको समझ में आया कि यही भक्त के मिलने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो भगवान को भी तो मिलना है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति सिद्धांत जी का उदाहरण देते हुए, भगवान के कुछ भक्त हैं खास करके स्त्रियां स्वकीय भाव में हैं और कुछ कुछ परकीय भाव में, तब लक्ष्मी जी से छुट्टी तो लेना है, लेकिन यह कह दे कि दूसरे स्त्री से मिलने के लिए जा रहा है तो छुट्टी मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं दूसरे भक्तों से थोड़ा मिल करके आ रहे हैं। तो रथ यात्रा के दिन वे रथ पर बैठ करके निकलते हैं, छुट्टी लेकर के फिर सामने आए नयनोत्सव, और इसके बाद पांडु विजय, भगवान को रथ पर चढ़ाया जाता है और भगवान रथ पर बैठ करके जाते हैं। तो रथ यात्रा के पीछे अनेक भाव है, उड़ीसा में जो प्रचलित भाव है उसके अनुसार। अब भगवान बीमारी से ठीक हुए हैं तो थोड़ा रिलैक्स के लिए अपने मौसी के घर जाते हैं। अब हमको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्त्री अपने बहन के पुत्र से बहुत स्नेह करती, मौसी का बहुत स्नेह होता है। और बीमारी बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अपने मौसी के घर जाते हैं, और भी भक्तों को दर्शन देना है 14 दिन से, तो बेड रूम में अपने पत्नी के साथ हैं, दूसरे भक्त व्याकुल हैं उनको दर्शन देने के लिए। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वृंदावन के लिए इतना व्याकुल हैं कि अब रहा नहीं जा रहा, तो वे वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इन सब बातों को लिखे हैं, और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का आस्वादन करते हैं, तो चैतन्य भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। रथ पर जब भगवान आरूढ़ हो जाते हैं तो बहुत जोर से बोलते हैं, मणिमा मणिमा, ये उड़िया का शब्द है, इसका अर्थ है बहुत इसका अर्थ है आदर में होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही उड़िया का शब्द है जो बहुत बड़ा व्यक्ति है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु आकर के कई एक श्लोक बोलते हैं, जयति जयति जन निवासो देवकी जन्म बादो, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं और कीर्तन करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के आस्वादन के लिए 7 टीम तैयार करते हैं, 2-2 मृदंग बजाने वाले। अब जब कीर्तन होता है तो मृदंग को सुन करके सब लोग पागल हो जाते, अपने से नृत्य करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो टोली है तो घूम घूम करके कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, चैतन्य महाप्रभु कभी कीर्तन करते हुए आगे निकल जाते हैं तो रथ बहुत तेजी से, और कीर्तन करते हुए जब पीछे पड़ गए तो अब लोग ठेल रहे हैं रस्सी खींच रहे हैं, लेकिन रथ बढ़ ही नहीं रहा। और चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथ जी, ये बहुत बहुत लीला है, और चैतन्य महाप्रभु उसी क्रम में रहस्य दर्शन भी कराए। रहस्य दर्शन का अर्थ है कि 7 ग्रुप था और चैतन्य महाप्रभु एक साथ 7 ग्रुप में हो गए, लेकिन जो ग्रुप था वो समझता था केवल हमारे साथ है, लेकिन कुछ लोग देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुप में। तो ऐसे बहुत बहुत लीला किए, और उसी में चैतन्य महाप्रभु का भाव बदला तो एक श्लोक बोलने लगे, और श्लोक वह काव्य प्रकाश या कोई ग्रंथ है उसका एकदम लौकिक श्लोक है, वो नायक नायिका का वर्णन है, यह कौमार रहस एव ही बर, तो कोई नायिका कह रही है कि मिलन तो हुआ है अपने प्रेमी से, वही है, वही चैत्र की रात्रि है, और एकदम वही है, लेकिन फिर भी हमको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। रेवा रुत सिद्धित सितरुतल चेतः समुत्कंठते, जिस दिन प्रथम मिलन हुआ था रेवा नदी के तट पर बेतसी वृक्ष के नीचे, हमारी इच्छा हो रही है कि वहीं इसके साथ मिले। अब दूसरे लोग तो कुछ समझ नहीं रहे क्या चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर तो इसको समझ रहे, उसके अनुसार पद गाने लगे और रूप गोस्वामी तो उसका अनुवाद ही कर दिए। तो रथ यात्रा में अब भाव बदला, जिस श्लोक का आस्वादन गंभीरा मंदिर में करते थे स्वरूप दामोदर के साथ करते थे, तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। तो एक बार फिर से आप लोग साथ में श्लोक को बोलिए।
आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधय संसार कूपपतितो तरणावलम्बम् गेहम् जुषामपि मनस उदयात् सदानः।
श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। कुरुक्षेत्र में एक बार ग्रहण लगा, द्वारका से कृष्ण बलराम के साथ यादव लोग आ रहे थे और भारत के सब तरह सब ओर से लोग वहां उपस्थित हो रहे थे पुण्य अर्जन के लिए। ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो ये भी कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र में गए। भगवान सबसे मिले, लेकिन गोपियों की स्थिति तो सबसे भिन्न है। तो विविक्त उपसंगम्य, गोपियों की भावना को समझ रहे थे कि भरी समाज में अपनी बात खुल करके नहीं कह पाएंगे, तो थोड़ा भगवान एकांत में चले गए, उनका आलिंगन किए, कुशल वार्ता पूछे और गोपियों को समझाने लगे। कई एक बात समझा रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि तुम लोग दुखी क्यों हो रही हो, हमारा वियोग नहीं है, पूरा पूरा वियोग नहीं है, हम तो सर्वव्यापक हैं, तुम लोग चिंतन करो ध्यान करो हमारी अनुभूति हो जाएगी, तुम्हारा वियोग शांत हो जाएगा। या भगवान जब बात बोल रहे हैं तो अब गोपियों पर क्या रिएक्शन हुआ, सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक बोले हैं तो उसका दो अर्थ किया गया है, तो यथाश्रुत अर्थ हम लोगों के जो स्तर है उसके अनुसार अर्थ किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान उपदेश दिए तो गोपियों का जीव कोष ध्वस्त हो गया, मतलब जो उनका अज्ञान है, जो आवरण है, जो ज्ञान को आच्छादित किया है वो समाप्त हो गया और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। आहु बहुवचन में एक कोरस है, एक साथ बोल रही है लेकिन राधा रानी का स्वर प्रधान है, जो कह रही हैं कि हे नलिन नाभ, हे नलिन नाभ, नलिन नाभ मतलब जिनके नाभि कमल के समान सुंदर है, उपलक्षण है जो परम सुंदर है, तो ते पदारविंदम आपका चरण कमल है। और चरण कमल के विषय में कह रही हैं कि अगाध बोधय जोगेश्वर हृदय विचिन्त्यम, जिनका ज्ञान बहुत अधिक है, अथाह ज्ञान जो रखते हैं और बड़े बड़े जोगी हैं, जो जोग में आरूढ़ हैं, तो आपके इसी चरण कमल का हृदय में चिंतन करते हैं। संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो लोग संसार कूप में पड़ गए हैं, जन्म मृत्यु में पड़ गए हैं, तो उससे पार होने के लिए एकमात्र अवलंबन यही है। कोई व्यक्ति कुआं में गिर जाए तो बिना कुछ सहारा का नहीं निकल सकता, चाहे रस्सी का सहारा, सीढ़ी का सहारा या दीवार का सहारा, कुछ न कुछ सहारा चाहिए, बिना सहारा का नहीं निकल सकता। तो उसी प्रकार जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गया, इस कुएं में गिर गया है, तो उसके लिए एकमात्र सहारा आपके चरण कमल है। तो कह रहे कि गेहम जुसाम अपि मनस उदयात् सदान, गोपियों का भाव है कि यहाँ आपसे हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा आपके उपदेश से, हमारा अज्ञान दूर हो गया, लेकिन अभी तो हम अपने गृहस्थी में जाएंगे और गृहस्थी का ऐसा स्वरूप है कि राग के चलते, घर के काम धंधा के चलते आपका स्मरण हो सकता है कि न हो पाए, तो कृपा करके आप अपन आपका चरण कमल हमारे हृदय में उदित होता रहे। तो हम लोगों का जो स्तर है उसके अनुसार गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि आपके चरण कमल की बड़ी महिमा है, इस अर्थ में कि बड़े बड़े जोगी इसका अपने हृदय में चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जो लोग जन्म मृत्यु की श्रृंखला में पड़ गए, संसार में गिर गए, तो इसे बाहर जाने का एकमात्र अवलंबन। तो हम तो यहाँ आपसे मिल करके सुखी हुई, लेकिन अब गृहस्थी में जाएंगे तो कृपा करके वही चरण कमल गे हम जुसाम पे घर गृहस्थी के काम में भी लग जाए तो हृदय में स्फुरित होता रहे, उदित होता रहे, हमारा उसका स्मरण बना रहे, यह गोपियों की प्रार्थना है। लेकिन जैसा आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े कि गोपियों को चिंतन से संतोष नहीं है, तो अब इसका वास्तविक अर्थ है कि जब भगवान उपदेश दिए कि हमारा वियोग नहीं है, तुम लोग चिंतन करो, ध्यान करो, हमारे अनुभूति से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, अब यह सुन करके जीव कोश जल गया। इसका अर्थ है कि जैसे जले पर कोई नमक छिड़क दे, तो वैसे गोपियां तो और ही पहले से व्यथित थी, भगवान की बात सुन करके उनका एकदम भीतरी हृदय भी जल भून गया, और ये एक तरह से आक्रोश में बोल रही है, वे जल करके बहुत दुखी हो करके और इस श्लोक को बोल रही है। तो फिर से इस श्लोक को बोलिए, आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधय संसार कोपपतितो तरणावलम्बम गेहं जुषामपि मनस उदयासदान। ओ चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके और खुद ही इसका भाव प्रकट कर रहे हैं त्रिपदी में। तो इस श्लोक का क्या भाव है, चैतन्य महाप्रभु के शब्द में ही हम सुनेंगे। आगे बढ़ा सकते हो, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी तहा तुम पद करा यदि तुम्हार पूर्ण कृपा दूसरे और मन को अलग अलग किया, लेकिन राधा रानी कह रहे हैं कि हमारा मोर मन वृंदा, हमारा मन तो वृंदा। क्या मतलब, जैसे हृदय है तो मन से अलग नहीं, दोनों एक साथ, तो उसी तरह राधा रानी को वृंदावन से अलग नहीं किया, मने पने एक करी जाए, हमारा मन और बल एक दोनों अलग है। और राधा रानी को वृंदावन से कभी बाहर जाए, जैसे मन से हृदय हृदय से मन को अलग नहीं, तो वैसे राधा रानी को वृंदावन से अलग नहीं। तुरंत कोई प्रश्न आप नहीं कह रहे हैं कि परिवार से कुरुक्षेत्र, तो राधा रानी श्लोक बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र और एक तरफ कह रहे हैं कि वे वृंदावन से बाहर जाएंगे, तो लेकिन इसको हमको एक घटना का स्मरण हो जाता है। एक बार हमको बाहर जाना था, अब हमको नहीं समझ में आता डाक से जानते थे, जो पासपोर्ट मांग रहे, हमारा स्टूडेंट था, मतलब पासपोर्ट मांग रहे दुकान से चलेंगे, मैं आता रख दिया, अरे वो हरे कृष्ण। आवाज सुनाई दे रही है? तो पासपोर्ट गया लेकिन ओरिजिनल नहीं गया, कॉपी कही जो करके। तो उसी तरह राधा रानी कुरुक्षेत्र में बोल रही लेकिन छाया राधा एक रूप से छाया रूप से तो कह रहे हम तब आपकी कृपा जब अपने
Yeah.
उपदेश दे रहे हैं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिसको देह का स्मरण हो जाए
मो तोरे ऐछे कहते न जुआयो कृपा मय जान हमारो पेद मोरे ऐछे कहते न चित काढ़े तो मे विषय चाहे लगाइते यत्न करी नरी काढ़िबा चित काढ़ी तो महते विषय चाहे लगाइते यत्न करी चित काढ़ी तो महते विषय चाहे लगाइते यत्न करी नारी काढ़िबारे सारे ध्यान शिक्षा करा हो लोक
संसार से बाहर जाने की समस्या को उपदेश देना उसकी स्थिति को समझकर उपदेश देना चाहिए।
देह स्मृति नहीं जार संसार को कहां तार कहा न चाहे उधार रह समुद्र जाले कामती मिंगिले गीले गोपी गणे निहतार पार
गोपियां अपनी समस्या बतला रही है। हम लोग तो विरह रूप समुद्र के जल में पड़े और जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछली होती है कि बड़े बड़े मछलियों को भी निगल जाए तीन जिसका वह मछली जिसका विस्तार 100 मीटर और उसको भी जो निगल जाए उसको त्रिमिंगल कर। तो कह रहे हैं कि काम मतलब आपको मिलने की स्त्री है, यह त्रिमिंगल यह हमको ग्रस्त रहा, तो हमको इस समुद्र से पीड़ा समुद्र से पार किया। ये संसार कुछ हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या पीड़ा समुद्र। और अब भगवान पर जो कंप्लेन कर रहे थे बहुत आश्चर्य होते कैसे आप वृंदावन गोबर जमुना पुलिना को शेख मुझे रास्ता दिखा दी शेख ब्रज ब्रज माता पिता बंधु कोमल बात कर। अरे और तो की बात कैसे माता पिता को कैसे ये तो बहुत आश्चर्य। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन जयी कुंज रसदी कली। ब्रज ब्रज जन माता पिता बंधु गण बड़ चित्र के मन पासरी। गोपियां कह रही अपने सुख से सर, लेकिन माँ यशोदा का मुख अपने उनके मुख को देखते तो दो में से एक का या तो ब्रज में जाकर जीवित या हम जान से